नमस्कार भारत, आज है 8 मई, दिन सोमवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। इमैनुअल मैक्रों होंगे फ्रांस के अगले राष्ट्रपति। 2/3 मतों से मरी लपेन को चुनाव में दी शिकस्त।
मेरे प्यारे कंपैट्रियोट्स डी मेट्रोपोल डाउट्रेमेर एंड डी लेट्रांजर।
भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेरने की बीजेपी और कांग्रेस की तैयारी। सहारनपुर के एक गाँव में दो समुदायों के बीच हिंसा और तनाव की जड़ में क्या है, सुनिएगा विशेष रिपोर्ट।
पहली तो जड़ की बात है, हमारे गांव में 10 साल हो गए चमार प्रधान था, इसके वजह से ये जड़ रहे थे जी, जिस वजह से इन्होंने लपेटा दिया गरीब जनता पर।
होगी साप्ताहिक पेशकश खेल और खिलाड़ी भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। फ्रांस में हुए मतदान में लोगों ने इमैनुअल मैक्रों को देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के तौर पर चुना है। यूरोप की एकता की हिमायत करने वाले इमैनुअल मैक्रों ने धुर दक्षिणपंथी पार्टी की नेता मरी लपेन को पछाड़ा। इमैनुअल मैक्रों को कुल मतों में से 2/3 वोट मिले हैं। पेरिस में उनके हजारों समर्थक उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए जुटे और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वो बदलाव के लिए संसद में समर्थन जुटाएंगे। मरी लपेन की पार्टी नेशनल फ्रंट अब फ्रांस में मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है। आने वाले रविवार तक इमैनुअल मैक्रों को राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलां से कार्यभार लेना होगा। चुनाव के बाद इमैनुअल मैक्रों ने जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल से फोन पर बात की। रिपोर्टों के मुताबिक इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वो जल्द ही बर्लिन का दौरा करेंगे। वहीं एंगेला मर्केल के प्रवक्ता ने कहा कि मैक्रों की जीत मजबूत और एकजुट यूरोप की जीत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर इमैनुअल मैक्रों को राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए बधाई दी। अमेरिका के मिशिगन राज्य में एक भारतीय मूल के डॉक्टर का शव बरामद किया गया है। उन्हें गोली लगी हुई है। पुलिस ने फ्रीलैंड शहर के रहने वाले रमेश कुमार का शव डेट्रॉयट शहर के पास एक हाईवे के नज़दीक उनकी कार की पिछली सीट से बरामद किया। रमेश कुमार के पिता नरेंद्र कुमार ने गुरुवार को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका बेटा सुबह दफ्तर जाने के लिए निकला था, लेकिन वहां नहीं पहुंचा। 32 वर्षीय रमेश कुमार डेट्रॉयट शहर में हेनरी फोर्ड नामक अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग में डॉक्टर थे। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एन जो सू ने सियोल में कल यानी मंगलवार को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक चुनावी रैली की। उन्होंने इसमें कहा कि अगर लोग दो प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों को वोट देंगे तो वो बीते हुए कल की भूलों को दोहराएंगे। एन जो सू ने ये कहा। अगर आप नंबर एक या नंबर दो में से किसी एक को चुनते हैं तो देश फिर से पुराने दिनों में चला जाएगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, मैं वो सब कुछ दूंगा जिससे बदलाव आएगा। ये थे एन चोल सू के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। नाइजीरिया के राष्ट्रपति के मुख्य प्रवक्ता अब्बा क्यारी के मुताबिक कल चरमपंथी संगठन बोको हराम की कैद से बंदी बनाई गई 82 चिबोक लड़कियों को रिहा किया गया है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा में राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी इन लड़कियों का स्वागत करने वाले हैं। अब्बा क्यारी ने इस बारे में ये जानकारी दी और खुशी जाहिर की। लड़कियों और बहनों का हम स्वागत करते हैं, हम खुश हैं कि ये लड़कियां वापस आ गई हैं। नाइजीरिया का हर शख्स आज इन लड़कियों को के लौटने की खुशी में अपनी मुश्किलें भूल गया है। ये थे अब्बा क्यारी के शब्द। चरमपंथी बोको हराम ने चिबोक से एक स्कूल से कई लड़कियों को 2 साल पहले अगवा कर लिया था। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वेनेजुएला की विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के संविधान को दोबारा लिखने के प्रोजेक्ट का विरोध किया है। विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि राष्ट्रपति का ये प्रोजेक्ट धोखाधड़ी से भरा हुआ है। वेनेजुएला में कई हफ्तों से चल रहे विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के मकसद से संविधान में बदलाव के लिए नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के विरोधियों का आरोप है कि ये सब आम चुनाव को टालने के लिए किया जा रहा है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। उदारवादी इमैनुअल मैक्रों और धुर दक्षिणपंथी मरीन लपेन में से फ्रांस का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, इस सवाल पर से पर्दा उठ गया है। 39 साल के युवा और अपने प्रचार अभियान से मतदाताओं को सम्मोहित कर देने वाले इमैनुअल मैक्रों फ्रांसवा ओलांद के बाद अगले कुछ दिनों में फ्रांस के राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। उन्होंने मरी लपेन को 2/3 मतों से शिकस्त देकर राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। कल देर रात मतदान खत्म होने के बाद जैसे ही प्रोजेक्शंस आए, ये तय हो गया कि फ्रांस में राजनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। जीत के प्रति आश्वस्त होने के बाद मैक्रों ने अपने समर्थकों से कहा कि वो विभाजित नजर आ रहे देश को एकता के सूत्र में बांधेंगे। मैक्रों राष्ट्रपति तो चुन लिए गए हैं और ऊर्जा से भरे भाषण भी दे रहे हैं, लेकिन उनके सामने राजनीतिक और कूटनीतिक चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। ब्यौरा सुनिए हरिता कांडपाल से।
ये है इमैनुअल मैक्रों। यूरोप के सबसे बड़े देशों में एक फ्रांस में बड़ा राजनीतिक भूचाल लाने वाले मैक्रों फ्रांस के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। वो फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपति होंगे। कल शाम मतदान खत्म होने के बाद चुनावी नतीजों के पूर्वानुमान सामने आए, जिसमें मैक्रों को 65% वोट मिलने की खबरें आईं। पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम के प्रांगण में पहले से ही मैक्रों की जीत के जश्न की तैयारियां हो चुकी थीं। उनके हजारों समर्थक वहां जुटे हुए थे। साल भर में उन्हें राजनीति के शिखर तक ले जाने वाले समर्थकों का शुक्रिया अदा करते हुए इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि लोगों ने उन पर विश्वास जताया है और इस जिम्मेदारी का एहसास उन्हें है। 39 साल के मैक्रों ने पिछले साल एन मार्शे पार्टी का गठन किया था और पूरे चुनाव में मैक्रों बदलाव का चेहरा बनकर उभरे थे। उन्होंने पुरानी स्थापित पार्टियों को रेस से बाहर छोड़ दिया और उनसे लोगों को काफी उम्मीदें हैं। लूव्र के बाहर जमा उनके समर्थकों में एक गुइलोम डुबोय का कहना है, 65% वोट काफी होता है, हमने सोचा नहीं था कि इतने वोट मिलेंगे, ये फ्रांस के लिए नया युग है। मुझे उम्मीद है कि जून के संसदीय चुनाव में वो बहुमत जीत सकेंगे और बदलाव ला पाएंगे। राष्ट्रपति की दौड़ में मैक्रों की प्रतिद्वंद्वी धुर दक्षिणपंथी नेता मरी लपेन को करीब 35% वोट मिले हैं। अपनी चुनावी हार को स्वीकार करते हुए मरी लपेन ने कहा,
Par ce résultat historique et massif, les Français ont désigné l'Alliance patriote et républicaine.
ये ऐतिहासिक और बड़ा नतीजा है जिसमें फ्रांस के लोगों ने देशभक्त और रिपब्लिकन गठबंधन को नए राष्ट्रपति के मुख्य विपक्ष के रूप में चुना है। पहले राउंड में साफ हो गया था कि फ्रांस की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है जब लोगों ने पुरानी पार्टियों को खारिज कर दिया था। वहीं दूसरे राउंड में राष्ट्रवादियों और वैश्वीकरण के हिमायतियों के बीच मुकाबला था। मैं सभी देशभक्तों से अपील करती हूं कि फ्रांस में निर्णायक लड़ाई का हिस्सा बने और आने वाले महीनों में फ्रांस को आपकी जरूरत है। मरी लपेन का इशारा जून में होने वाले संसदीय चुनाव की तरफ था। मैक्रों फ्रांस में तेजी से उभरने वाले एक ऐसे नेता की तरह सामने आए हैं जिसने पहला चुनाव लड़ा और जीता तो वो सीधे राष्ट्रपति का चुनाव था, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद सरकार बनाना और अपने वायदों को पूरा करना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि उनकी साल भर पुरानी एन मार्शे पार्टी का एक भी सांसद नहीं है। सबसे पहली चुनौती उनके लिए अगले महीने होने वाले संसदीय चुनाव हैं, जिसमें उन्हें सीटें हासिल करना काफी जरूरी है।
इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। ब्यौरा सुना रही थी हरिता कांडपाल। थोड़ी देर पहले मैंने पेरिस में मौजूद बीबीसी उर्दू सेवा के संवाददाता हुसैन अस्करी से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि मतदान खत्म होने के बाद से अब तक का घटनाक्रम कैसा रहा।
देखिए, अब से चंद घंटों पहले जो विनिंग कैंडिडेट हैं इमैनुअल मैक्रों, जो अब फ्रांस के नए सदर हैं, उन्होंने अब से चंद घंटे पहले अपनी विनिंग जो स्पीच है, विक्ट्री स्पीच है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो पूरे फ्रांस को साथ लेके चलेंगे और उन्होंने कहा है कि हम फ्रांस के चेहरे को, फ्रांस के फेस को बदल देंगे और हम बिजनेस की नई नई जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो पैदा करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है उसका फायदा हो। और उन्होंने कहा है कि अब ये एक नया फ्रांस होगा जिसकी तरफ हम काम कर रहे हैं।
अस्करी साहब, जो लूव्र म्यूजियम है पेरिस का, बड़ा फेमस, दुनिया भर में मशहूर है, वहाँ पर मैक्रों के समर्थक जश्न मना रहे हैं, आपने उनको बहुत करीब से देखा है, ये बताइए कि ऐसी कौन कौन सी बातें कही थी, काफ़ी यंग लीडर हैं जो, जिसकी वजह से वो जीते हैं।
देखें, एक तो ये कि हिस्ट्री बनी है दोनों सूरतों में, जो मैक्रों जीते हैं वो फ्रांस के सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र وہ پریزیڈنٹ ہیں, اور اگر میری لپین بھی جیت جاتی تو وہ فرانس کی پہلی خاتون ہوتی, تو دونوں صورتوں میں ہسٹری بننے جا رہی تھی اور وہ بن گئی تھی. اچھا دوسری بات یہ کہ میکرون ینگ ہیں, ینگ لوگوں میں مقبول ہیں, پرو یورپی یونین ہیں, وہ پرو بزنس ہیں, اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں, تو لوگوں کو ان کے اندر ایک امید نظر آئی ہے, اس وجہ سے انہوں نے کہا. اچھا یہ جو لوب میوزیم ہے جہاں پہ انہوں نے خطاب کیا ہے, وہاں پہ زبردست جشن کا سماں ہے ان کے سپورٹرز. آج میں سارا دن جو ان کا الیکشن کمپین کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے باہر ہم لوگ موجود رہے, وہاں پر دنیا بھر سے پریس آیا ہوا تھا, میکرون کے سپورٹرز وہاں پہ موجود تھے, اور وہاں پہ بڑا جوش و خروش تھا, لوگ نعرے لگا رہے تھے اور ایک زبردست قسم کا ماحول تھا. اس وقت لوو جو میوزیم ہے اس کے باہر اسی طرح کی صورتحال ہے. اب سے کچھ دیر پہلے میں لوو جو میوزیم ہے وہاں پہ بھی گیا تھا, وہاں پہ ان کے سپورٹرز موجود ہیں, وہ شور مچا رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں, تو ان کو ایک ظاہر سی بات جیت کا اپنی جشن منا رہے ہیں. لیکن یہی وہ لوو میوزیم ہے جس میں آج شام کے وقت, بلکہ دوپہر کے وقت, وہاں پر ایک بیگ ملا, اور اس بیگ خالی بیگ کی وجہ سے وہاں پر ایک سیکیورٹی الرٹ ہو گیا اور پورے میوزیم کو خالی کرا لیا گیا. اور اس واقعے کے بعد سیکیورٹی ایک مرتبہ پھر یہاں پر جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس کا حصہ بن گئی, لوگوں نے سیکیورٹی کے اوپر اور ٹیررزم کے اوپر بات چیت کرنا شروع کر دی. لیکن مجموعی طور پر بہت ہی پیسفل اور بڑے آرام سے یہ الیکشنز ہوئے اور لوگوں نے اپنے ووٹ کا رائٹ استعمال کیا.
یہ تھے پیرس میں موجود بی بی سی اردو سیوا کے سنواددتا حسین عسکری. فرانس میں دوسرے وشو یدھ کے بعد اب تک کیول دو دلوں سے راشٹرپتی چنے گئے ہیں, سوشلسٹ اور سینٹر رائٹ ریپبلکن پارٹی سے. اب یہ پہلا موقع ہے جب فرانس کے راجنیتک آسمان پر ایک 39 سال کا یوا ستارہ بن کر چمکا ہے, اور یہ وہ شخص ہے جسے 3 سال پہلے تک فرانس میں اکا دکا لوگ ہی جانتے تھے. میں نے بات کی فرانس میں ورشٹھ پترکار رنویر نائر سے, اور سب سے پہلے پوچھا کہ یہ چمتکار کیسے ہوا, آخر جنتا نے میکرو میں کیا ایسا دیکھا جو اتنا بھاری سمرتھن دے بیٹھی.
میرے خیال سے اس میں دو مکھیہ سے کارن رہے ہیں میکرون کی اس بھاری بہمت سے جیت کے. پہلا تو یہ کہ انہوں نے ایک پوزیٹیو سندیش بھیجا ہے فرانس کی جنتا کو, جہاں پہ مارین لپین کے سندیش پہ بہت زیادہ کرودھ تھا, وہ یورپ کے ورودھ تھی, وہ امیگریشن کے ورودھ تھی, اس کے سامنے میکرون نے ایک طرح سے جنتا میں ایک امید کے سندیش بھیجا تھا کہ ہم فرانس میں کچھ نیا بدلاؤ لائیں گے, ہم فرانس کو پرگتی کے پتھ لے جائیں گے. جس طرح کے وہاں کی فرانس کی اکانومی میں جو چیلنج ہے, یا یہاں پہ جو یووا میں جو روزگار کی جو چنتائیں ہیں اس کو ہم ختم کریں گے اور فرانس کو ایک نئے پتھ پہ لے کے جائیں گے. تو اس طرح سے ایک جنتا نے ایک پازیٹو سندیش بھیجا ہے, اور اسی کارن سے انہیں اس طرح سے دو تہائی کا بہمت ملا ہے.
رنویر میکرون راشٹرپتی تو بن گئے ہیں, لیکن سنسد میں ان کی پارٹی کا کوئی پرتندھتو نہیں ہے. جون میں سنسدیے چناؤ ہونے ہیں, کیا کیا چنوتیاں ہوں گی ان کے سامنے؟
یہ سب سے بڑی چنوتی رہے گی, کیونکہ آخر وہ راشٹرپتی چن لیا گیا ہے, لیکن جب تک سنسد میں ان کی پارٹی کو یا ان کے سمرتھکوں کو کسی بھی پارٹی سے ان کو اگر بہمت نہ ہوگا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا ان کے لیے اپنے امپلیمنٹ کرنا, کیونکہ سب پارٹی ایک نئی ہے جہاں پہ ان کا کوئی بھی ایک بھی پرتنیدھی نہیں ہے سنسد میں. دوسری طرف ہم نے کل شام سے ہی دیکھا ہے کہ جو ریپبلکنز ہیں جو کہ اپوزیشن رہی ہے پچھلے 5 سالوں میں, اور وہاں پہ سوشلسٹ بھی, حالانکہ میکرون کو ریپبلکن اور سوشلسٹ نے دوسرے راؤنڈ میں سمرتھن دیا تھا, لیکن اب جب سنسدیے چناؤ ہے اس میں یہ سب پارٹیاں الگ الگ روپ سے آئیں گی سامنے, اور تب میکرون کے سامنے سب سے بڑا چیلنج رہے گا کہ وہ آنے والے کچھ ہی ہفتوں میں کیسے اپنی پارٹی کو اس طرح سے کھڑا کر پائیں گے کہ انہیں کم سے کم کچھ 100-150 سنسد کے سیٹس انہیں مل جائیں. یہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج رہے گا.
رنویر, آپ لمبے عرصے سے فرانس میں رہ رہے ہیں, میکرون کے لیے وہ کافی بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں, دیش کو ایک کرنے کی بات کر رہے ہیں, یوواؤں کو سپنے دکھا رہے ہیں, کتنے کامیاب رہیں گے وہ؟
یہ فی الحال کہہ پانا بہت مشکل ہے. یہ صرف فرانس کے اوپر بھی نربھر نہیں کرتا, یہ میکرون کے اوپر نربھر نہیں کر سکتا, نربھر کرے گا کہ یوروپ میں کیا ہو رہا ہے اور کچھ حد تک وشو کی آرتھک استھتی کیا رہے گی یا وشو کی راجنیتک استھتی کیا رہے گی آگے آنے والے 5 سالوں میں. تو فرانس میں وہ اگر کچھ پازیٹو کر سکے تھوڑا بہت بھی, تو انہیں باقی فیکٹرز کو دیکھنا پڑے گا, اس کے بعد ہی وہ کچھ کامیاب ہو پائیں گے. ایک طرح سے یہ بھی ہمیں بھولنا چاہیے کہ فرانس کے سامنے جو یا میکرون کے سامنے جو چیلنج ہے وہ کافی بڑا ہے. وہاں پہ آرتھک استھتی حالانکہ 2008 سے اب کافی اچھی ہے, لیکن پھر بھی وہاں پہ جو اکنامک جو گروتھ ہے جی ڈی پی کا وہ 1 یا 1.25% کے آس پاس ہی ہے, حالانکہ پہلے یہ 3 3.5% हुआ करता था। दूसरी तरफ जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है वो 10% के आसपास है। इसे जर्मनी के साथ साथ देखे जाए तो जर्मनी में 4-4.5% है। तो उन्हें लेवल तक फ्रांस को आगे बढ़ाना है। और अभी भी यूरोप की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, हालांकि कल शाम से यूरो ने काफी तेजी आई है, वो डॉलर के प्रति काफी स्ट्रांग हुआ है। उसी तरफ से अगर आप देखें कि ब्रसल्स में यूरोपियन कमीशन का जो मुख्यालय है वहां पे भी काफी एक तरह से खुशी जाहिर की गई कि मैक्रों की विजय से यूरोप में जो एक तरह से उदारवाद की शक्तियां उन्हें काफी समर्थन मिला है, उनमें काफी एक तरह से एनकरेजमेंट मिला है। ये हैं तो पॉजिटिव्स, लेकिन क्या ये काफी होंगे मैक्रों के लिए कुछ चमत्कार करने के लिए, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है।
ये थे फ्रांस में वरिष्ठ पत्रकार रणवीर नायर, जो बता रहे थे कि मैक्रों की राह आसान नहीं होगी।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
फ्रांस की राजनीति से और अब भारत की राजनीति का रुख करते हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से हटाए गए कपिल मिश्रा ने कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करने में देर नहीं की, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इसे लेकर केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही हैं। बीजेपी आज उपराज्यपाल से मुलाकात करने वाली है। वहीं कांग्रेस ने कल यानी मंगलवार से हस्ताक्षर अभियान के जरिए केजरीवाल पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार की है। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
दिल्ली में रविवार यानी कल का दिन मौसम का सबसे गर्म दिन था, लेकिन राजनीतिक गर्मी उससे भी कहीं ज्यादा थी। वजह थी दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कपिल मिश्रा का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला।
सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नगद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कपिल मिश्रा के आरोपों को खारिज करने में देर नहीं की।
बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूँ, वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है, कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है, इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है।
कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी में सीनियर नेता कुमार विश्वास के करीबी माने जाते हैं, लेकिन कुमार विश्वास भी केजरीवाल के पक्ष में दिखे। आम आदमी पार्टी में भले ही कपिल मिश्रा अलग पड़ गए हों, लेकिन विपक्षी दलों ने उनके उठाए मुद्दे को लपक लिया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही मिश्रा के लगाए आरोपों के आधार पर केजरीवाल से इस्तीफा देने को कहा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने बीबीसी से कहा,
इस्तीफा भी मांगा जाएगा, सदन में ये मामला उठाया जाएगा, कल उपराज्यपाल से हम लोग मिल रहे हैं। प्रश्न ये है कि जो नैतिकता की बात करते थे, आज उन्हीं के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं। इससे बड़ी अनैतिकता किसी एक पार्टी की और क्या हो सकती है कि वो कहां से कहां पहुंच गए। एक शब्द भी इस मामले में केजरीवाल जी ने क्यों नहीं बोला? क्या नैतिकता के आधार पर उनको नहीं कहना चाहिए था कि अगर मुझ पर आरोप आए तो इसकी जांच करा दी जाए?
उधर कांग्रेस केजरीवाल पर दबाव बनाने के लिए सड़क पर उतरने को तैयार है। कांग्रेस नेता अजय माकन,
भ्रष्टाचार के मामले में बड़े संगीन आरोप लगे हैं। इससे पहले जब केजरीवाल दूसरों पे आरोप लगाते थे जब तो सबूत नहीं पेश करते थे। हमारी मांग ये है कि इनके ऊपर जांच होनी चाहिए। राइट टू रिकॉल और रेफरेंडम की बात केजरीवाल जी किया करते थे। हम लोगों ने तय किया है कि हम मंगलवार से 10 लाख हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम दिल्ली में सिग्नेचर्स कराएंगे और प्रेशर डालेंगे कि केजरीवाल नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दें। शायद पहली बार ये हो रहा होगा कि 7 मंत्री और मुख्यमंत्री कुल संख्या है और 6 उसमें से भ्रष्टाचार के चार्ज में फंसे हुए, 4 निकल गए।
कभी सड़क से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान शुरू करने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी विरोधी दलों की मांग का जवाब किस अंदाज में देगी, और आम आदमी पार्टी में अलग पड़े कपिल मिश्रा को क्या पार्टी के अंदर कोई समर्थन मिलेगा? आज इन सवालों के जवाब का इंतजार हर किसी को रहेगा।
रिपोर्ट सुना रहे थे वात्सल्य राय। और अब दिल्ली से निकलने वाले अखबारों की समीक्षा सुनते हैं हरिता कांडपाल से। जी,
सभी अखबारों में आज जो है भारत प्रशासित कश्मीर की एक खबर है। जनसत्ता अखबार लिखता है कि कश्मीर में आतंकवादी को दफनाने के दौरान दहशतगर्दों ने गोलियां चलाकर सलामी दी। द हिंदू अखबार लिखता है कि भारत प्रशासित कश्मीर में कार्रवाई के दौरान शनिवार को 5 लोग मारे गए थे, उसमें से एक सेठा था जिसके जनाजे में 4 चरमपंथी पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर बंदूकों से गोलियां चलाई और बंदूकें निकालकर इस तरह सलामी दी और काफ़ी वहां पर दहशत का माहौल बन गया था। एक और खबर है जो मैं इंडियन एक्सप्रेस में देख रही हूँ, सहारनपुर में जो हाल ही में दलितों और ठाकुरों की बीच हिंसा हुई थी और दलितों के 25 घर जलाए गए थे, उसमें इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट दी है कि यहाँ पर क्या वजह थी जो ये हुआ। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि 111 पुलिसकर्मी यहाँ पर आवंटित किए गए हैं लेकिन सिर्फ 22 की पोस्टिंग की गई है और यहाँ पर काफ़ी कमी है और इस वजह से, और पुलिस ने इसमें माना भी है, एसपी ग्रामीण क्षेत्र कहते भी हैं कि अगर पुलिसकर्मियों की संख्या ज़्यादा होती तो ये इस घटना को रोका जा सकता था। एक और खबर है मुलायम सिंह यादव में, सभी अखबारों में देख रही हूँ, जनसत्ता ने इस पर लिखा है कि कुनबे में वर्चस्व की लड़ाई से जूझ रही समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो इस तरह की हार ना होती और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर जो है वो गलती हो गई है।
बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के गांव में पिछले कई दिनों से तनाव का माहौल है। आरोप है कि बीते शुक्रवार को महाराणा प्रताप जयंती के दिन एक समुदाय के लोगों ने दलितों के साथ मारपीट की और उनके कई घर जला डाले। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 15 लोग जख्मी हो गए। फैसल मोहम्मद अली वहाँ गए हुए हैं, सुनिए उनकी एक रिपोर्ट।
पक्की सड़क छोड़ ईंटों वाले पतले रास्ते से जैसे ही आप वहां घुसते हैं तो वो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। बड़े से गेट के ऊपर के हिस्से पर लाल रंग से लिखा हुआ जय राजपूताना। दलितों की तादाद हालांकि शब्बीरपुर में राजपूतों से कहीं ज़्यादा है लेकिन राजपूतों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जुमे के दिन दलितों के 25 घर फूंक डाले। ऋषि पाल हालांकि कहते हैं,
परसों जो बाहर से लड़के आ रहे थे इस साइड से, मैं वो लेने आए तो उसमें फनसंग में जा रहे थे उसके महाराणा प्रताप के, तो वे डीजे डाजे भी लेकर आए तो उन्होंने जैसे यहाँ को निकल के जा रहे थे तो उन पर पथराव किया हरिजनों ने। पथराव करने के बाद पुलिस भी थी साथ में, पुलिस के अलावा भी मुंहजोरी करी उन्होंने।
ऊंची आवाज़ वाले म्यूजिक सिस्टम के साथ जब राजपूत नौजवानों की टोली शब्बीरपुर के गलियों से गुजरने की कोशिश कर रही थी तो दलितों ने इस पर इतराज़ जताया। पुलिस ने मामले को सुलझाने की कोशिश की लेकिन इसी बीच कहीं से कुछ पथराव हुए और फिर फूंक दिए गए 25 दलितों के घर। खबरें हैं कि शब्बीरपुर के दलितों ने महाराणा प्रताप जयंती यात्रा के गुजरने पर गांव में तनाव होने की आशंका से प्रशासन को पहले ही आगाह किया था। प्रशासन ने माना है कि इस यात्रा के गांव से गुजरने की आज्ञा राजपूत टोली के पास नहीं थी। दलितों के जो 25 घर फूके गए उनमें से एक था कुसुम का घर। कुसुम कहती हैं कि प्रतिमा के अलावा राजपूतों की दलितों से चिढ़ की एक और वजह गांव की प्रधानी भी थी।
पहली तो जड़ की बात है, हमारे गांव में 10 साल हो गए चमार प्रधान था, इसके वजह से ये जड़ रहे थे जी, इस वजह से इन्होंने लपेटा लिया गरीब जनता पर।
राजपूत युवक शक्ति की बात इसे पुख्ता करती नजर आती है।
प्रधान बना जी एक चमार, जब से कुछ ये ज्यादा ही राजनीति सी में हरे जी, आते जातों को रोकने लगे थे रास्ते में, बस यही हाल कर रखा था इन्होंने।
वहीं उनके साथ बैठे ऋषिपाल की बात से साफ होता है कि अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने का विरोध भी राजपूतों की तरफ से ही था।
एक अम्बेडकर की में तस्वीर रखे थे उसके पास, उस पर विरोध किया लोगों ने, उस पर विरोध करने के बाद उन्होंने कहा को हम भी निथारी लखन देने के ना लिखन देने के कहीं को।
पुलिस सुपरिटेंडेंट रफीक अहमद ने बताया,
यहाँ पे हमने 3 कंपनी पीएससी लगा रखा है पूरे इलाके में, 15 गांव करीब हैं जिनमें मिली जुली आबादी है। उसके अलावा 6 डिप्टी एसपी यहाँ पे लगे हुए हैं और 18 एसएचओ एसओ लगे हुए हैं और लोकल फोर्स लगा हुआ है।
मेरठ विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर सतीश प्रकाश सवाल उठाते हैं कि संत रविदास के मंदिर में राजपूत और दूसरी ऊंची हिंदू जाति के लोग कब से जाने लगे जो अम्बेडकर की प्रतिमा प्रांगण में लगाए जाने का विरोध कर रहे थे। सतीश प्रकाश इस मामले को एक राजपूत मुख्यमंत्री की लखनऊ की गद्दी पर बैठने से जोड़कर देखते हैं।
जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है उसके 3 दिन में पूरे उत्तर प्रदेश में 14 घटनाएं होती हैं जो सिर्फ उत्तर प्रदेश के दलितों के खिलाफ हैं, उन पर अत्याचार करने वाला अपर कास्ट है। तो इसलिए बीजेपी और योगी के रूप में जो सरकार आई है इसका जो सबसे बड़ा जो दंश है वो दलितों को झेलना पड़ रहा है।
अब तक महाराणा प्रताप से जुड़े आयोजन सहारनपुर जैसे जिला मुख्यालय में हुआ करते थे, हालांकि इन्हें अब गांव तक ले जाने का मन बनाया गया है। जैसे इस साल ही महाराणा प्रताप से जुड़े आयोजन मुजफ्फरनगर के अलावा हरियाणा के एक और गाँव में आयोजित किए गए हैं। फैसल मोहम्मद अली, BBC, शब्बीरपुर गाँव, सहारनपुर।
और अब कुछ खेलों की चर्चा कर लेते हैं। IPL में कल दो मैच खेले गए। पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। वहीं दूसरे मैच में गुजरात लायंस ने किंग्स इलेवन पंजाब को 6 विकेट से मात दे दी। IPL अपडेट के बाद अब सुनते हैं साप्ताहिक पेशकश खेल और खिलाड़ी आदेश कुमार गुप्त से।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। इस अंक में शामिल है मुक्केबाजी और समीक्षा। क्या चैंपियंस ट्रॉफी में टीम भेजने के निर्णय पर मुंह की खानी पड़ी BCCI को। शुरुआत मुक्केबाजी से। पिछले दिनों ताशकंद में समाप्त हुई एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के शिव थापा और सुमित सांगवान ने अपने मुक्कों का दम दिखाया। अब ये बात अलग है कि फाइनल में हार के साथ ही उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। 60 किलो भार वर्ग में शिव थापा फाइनल में दूसरी वरीयता हासिल उज्बेकिस्तान के अलनूर अब्दुरहमोव से तब हार गए जब अलनूर का पंच उनके सिर में लगा। ये पंच उन्हें कट भी दे गया जिसके बाद रेफरी ने मुकाबला रोक दिया। जबकि सुमित सांगवान 91 किलो भार वर्ग में कजाकिस्तान के वैसिली लेविट से हार गए। और अब समीक्षा। ICC से पैसे के टकराव के बाद भी BCCI को झुकना पड़ा और चैंपियंस ट्रॉफी में जाएगी टीम इंडिया। आखिरकार BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आज अगले महीने 1 जून से होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान करेगी। इसके साथ ही पिछले दिनों से चली आ रही वो उहापोह की स्थिति भी समाप्त हो गई कि क्या भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगी भी या नहीं। दरअसल BCCI और ICC के बीच राजस्व मॉडल को लेकर टकराव बना हुआ है। ICC को क्रिकेट प्रसारण के माध्यम से जो आमदनी होती है उसका 75% भारत के कारण ही है। ऐसे मामलों में इससे पहले ICC को अपने मनमाने फैसलों पर झुकाने में माहिर और कामयाब रही BCCI ने नई चाल चलते हुए चैंपियंस ट्रॉफी से हटने का मन बनाया, लेकिन उनकी इस चाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति ने ये कहकर नाकाम कर दिया कि BCCI को हर हाल में टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में भेजना पड़ेगा। तो क्या ये माना जाए कि BCCI को इस मुद्दे पर मुंह की खानी पड़ी है? क्रिकेट समीक्षक प्रदीप मैगजीन कहते हैं,
ICC क्या कह रही थी 2014 में जब ये बिग थ्री ने मेजर रेवेन्यू ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और इंडिया, श्रीनिवासन साहब ने करवाया कि ज्यादा पैसे उन्हीं को मिलेंगे क्योंकि इंडिया की मार्केट से पैसे आते हैं और इंडिया की वजह से ज्यादा देखते हैं, तो उन्होंने ये मनी का जो स्ट्रक्चर चेंज किया था इससे सारे लोग दुखी थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी देश हैं जो अभी क्रिकेट से पैसा बना नहीं पाते हैं कि उनको पैसे ना दिए जाए ताकि उनकी क्रिकेट सुधरे।
अब एक बात समझ से परे है कि जब लोढ़ा समिति की सिफारिशों के बाद BCCI से N श्रीनिवासन की छुट्टी हो चुकी है तो वो क्यों पर्दे के पीछे रहकर BCCI में दोबारा जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं? प्रदीप मैगजीन इस पहेली को सुलझाते हुए कहते हैं,
अभी तक लोढ़ा रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। जो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बनी है इनको कहा गया कि आप ये इम्प्लीमेंट करवाइए, और अभी भी बोर्ड के ऑफिशियल सोचते हैं कि शायद वो किसी तरीके से इससे बच जाए। और उसका एक जो रास्ता मेरे ख्याल से उन्होंने ढूंढा था कि बॉयकॉट ICC का कर लेते हैं, एक नेशनल इशू बना लेते हैं। क्रिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स कह रही है कि नहीं इसको मत बॉयकॉट करो, लेकिन बोर्ड कह रही है कि देखो ये गलत कह रहे हैं क्रिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो मेरे ख्याल से उनकी चाल थी कि किसी तरीके से क्रिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को बदनाम किया जाए, जिसमें वो सफल नहीं हुए। लेकिन अभी तक उनकी यही कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से जितने भी लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो किसी तरह से वापस आ जाए।
खैर जो भी हो, अंत भला तो सब भला। लेकिन BCCI अभी भी कह रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने का मतलब ये नहीं है कि वो ICC के राजस्व और संचालन मॉडल से सहमत है।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। फ्रांस में हुए मतदान में लोगों ने इमैनुअल मैक्रों को देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के तौर पर चुना। इमैनुअल मैक्रों को कुल मतों में से 2/3 वोट मिले हैं। अमेरिका के मिशिगन प्रांत में एक भारतीय मूल के डॉक्टर का शव बरामद किया गया है। उन्हें गोली लगी है। पुलिस ने फ्रीलैंड शहर के रहने वाले रमेश कुमार का शव डेट्रॉयट शहर के पास एक हाईवे से बरामद किया है। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एन चोल सू ने सियोल में कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक चुनावी रैली की। नाइजीरिया के राष्ट्रपति के मुख्य प्रवक्ता के मुताबिक चरमपंथी संगठन बोको हराम की कैद से 82 चिपोक लड़कियों को रिहा किया गया। BBC समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया शाकिर आलम ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।